धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, अभी अभी सुना और ठीक ही सुना कि धर्म के नाम पर कितना अधर्म चलता है। धर्म क्या है यही नहीं जान पाए तो धर्म धारण कैसे करेंगे, और धारण नहीं करेंगे तो क्या आशा करेंगे, क्या मिलने वाला है धर्म से। पहली कठिनाई तो यही कि बेचारे धर्म को आज के भारत ने बड़े दुर्भाग्य से संप्रदाय का पर्यायवाची बना दिया। धर्म शब्द इस्तेमाल करते ही सुनने वाले के कान खड़े होते हैं। पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ इस देश में, ये व्यक्ति कौन से धर्म की बात करेगा, हिंदू धर्म की कि बौद्ध धर्म की कि जैन धर्म की कि ईसाई धर्म की कि मुस्लिम धर्म की कि सिख धर्म की कि पारसी धर्म की, कौन से धर्म की बात करेगा। जैसे बेचारे धर्म का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। ये पुछल्ले साथ लगेंगे तो धर्म धर्म होगा। जहाँ ऐसा कोई पुछल्ला लगा, कोई विशेषण लगा, तो समझ लेना चाहिए धर्म डूब गया। धर्म के नाम पर संप्रदाय नाम का दानव सिर पर सवार हो गया हमारे। ये पहली बात थी जो बुद्ध ने बोधि में प्राप्त की। पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मेषु चक्षुं उत्पादी ज्ञानं उत्पादी पञ्ञा उत्पादी विद्या उत्पादी आलोको उत्पादी। सब प्रकाश जागा। पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मेषु, कभी सुना नहीं। उस समय के भारत में भी ये बीमारी कायम थी। धर्म क्या है इसे लोग भूल गए। धर्म क्या है ये बात पहले कभी सुनी नहीं और अब संबोधि द्वारा जानी। स्वयं बोधि जागी। सुनी सुनाई बात को जब तक मानता रहा तब तक धर्म नहीं समझ पाया। पढ़ी पढ़ाई बात को जब तक धर्म मानता रहा तब तक नहीं जान पाया धर्म क्या होता है। अनुभूति से जब जान गया तो बात समझ में आई, अरे धर्म तो कुदरत के कानून को कहते हैं, विश्व के विधान को कहते हैं, रित को कहते हैं। ये हिंदू कैसे होगा, आज का आदमी भी देख सकता है अपने भीतर, उसे साफ समझ में आने लगेगा ये धर्म हिंदू कैसे होगा भाई, ये धर्म बौद्ध कैसे होगा, ये जैन कैसे होगा, ईसाई कैसे होगा, मुस्लिम कैसे होगा, सिख या पारसी कैसे होगा। बात समझ में तब आने लगेगी जब अपने भीतर अनुभूतियों के स्तर पर कुदरत के कानून का दर्शन करने लगेंगे। धर्म शब्द इस अर्थ में भारत में पहले भी प्रयोग में आता था, धीरे धीरे इसका ये सही अर्थ लुप्त होने लगा। धर्म कहते थे किसी समय स्वभाव को, प्रकृति को। आज भी कभी कभी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हो जाता है जब कोई कहता है कि अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, उसका स्वभाव है जलना और जलाना। जरा सोच के देखिए मैं हिंदूपने की क्या बात आई, इसमें बौद्धपने की कि जैनपने की कि ईसाईपने की कि मुस्लिमपने की बात क्या आई। अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। ऐसे ही कहेंगे बर्फ का धर्म है शीतल होना और शीतल करना। क्या हिंदूपने की बात आई, क्या बौद्धपने की, क्या जैनपने की बात आई। टिक नहीं सकते ये शब्द धर्म के साथ। अंधेरा होता है तब ये शब्द जुड़ जाते हैं धर्म के साथ, धर्म अंधकार में चला जाता है और यही शब्द धर्म के नाम पर प्रमुख हो जाते हैं। बात समझ में आने लगती है जब भीतर कुदरत के कानून को देखना शुरू कर दे। मैं अपने मन में विकार जगाऊं, क्रोध जागा, द्वेष जागा, दुर्भावना जागी। कुदरत का बंधा बंधाया नियम है, जैसे ही क्रोध जगाऊंगा व्याकुल हो जाऊंगा, हो ही जाऊंगा। अपने को हिंदू कहता फिरूं, बौद्ध कहता फिरूं, जैन कहता फिरूं, ईसाई कहता फिरूं, कुदरत नहीं बख्शती, कोई पक्षपात नहीं करती। आग पर जो हाथ धरेगा जलेगा ही, आग इस बात को नहीं देखेगी कि हाथ धरने वाला आदमी हिंदू है, कि हाथ धरने वाला मुसलमान है, कि हाथ धरने वाला ईसाई है, कि ब्राह्मण है, कि शूद्र है, कि कौन है। उसका धर्म है, वो स्वयं जलती है औरों को जलाती है। ऐसे ही हमारे मन के विकारों का धर्म है, क्रोध जागता है तो स्वयं जलते हैं औरों को जलाते हैं, सारे वातावरण को संतापित कर देंगे। हिंदू पने का इससे कोई लेन देन नहीं, बौद्ध पने का इससे कोई लेन देन नहीं, ईसाई पने का इससे कोई लेन देन नहीं, मुस्लिम पने का इससे कोई लेन देन नहीं। जिस दिन ये बात इन प्रवचनों से नहीं, पुस्तकों से नहीं, चिंतन मनन से नहीं, अनुभूतियों से जिस दिन जानने लगेंगे, संबोधि जागेगी, अपनी बोधि जागेगी। पराई बात है ना, पराया ज्ञान हमारे लिए खाद का काम कर सकता है। हमारा अपना ज्ञान जागेगा उस दिन, हमारे लिए खाद्य बनेगा और हमारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। संबोधि, इसीलिए सिखाया संप्रज्ञान, अपना ज्ञान हो, अपनी प्रज्ञा हो, पराई प्रज्ञा, अरे श्रुत प्रज्ञा, कितनी ही सही बात हो हमने सुनी ना केवल, और सुनी और मान लिया, बड़ी श्रद्धा इसलिए मान लिया, बुद्ध की बात पर ही बहुत श्रद्धा जागी, या हम परंपरा से बौद्ध हैं तो बुद्ध ने कहा ना इसलिए हमने मान लिया बड़ी श्रद्धा से, या महावीर ने कहा ना इसलिए मान लिया बड़ी श्रद्धा से, अथवा किसी और ने, कृष्ण ने या राम ने या गीता ने या बाइबल ने कहा हमने मान लिया, मान ही लिया ना, जाना तो नहीं ना, अथवा बहुत अधिक किया तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, उस पर चिंतन करना शुरू किया, तर्क लगाना शुरू किया, और अब कहा अब जान गया, अब ठीक समझ गया जो भगवान बुद्ध ने कहा। देखो कितनी तर्क संगत बात है, कितनी बुद्धि संगत बात है, कितनी न्याय संगत बात है, मैं मान गया अब ठीक, बहुत अच्छी तरह समझ गया। जाना वाना नहीं अभी भी, केवल बुद्धि लगाइए उस पर। जिस दिन अनुभूति से जानना शुरू कर देगा उस दिन अपने कल्याण का रास्ता खुल जाएगा, अन्यथा धोखा ही धोखा, सारा जीवन धोखे में बीत जाएगा। फिर तो धर्म बौद्ध धर्म ही होगा हमारे लिए, हिंदू धर्म ही होगा हमारे लिए, जैन धर्म ही होगा, ईसाई धर्म ही होगा। धर्म का अपना कोई अस्तित्व होता है जो सार्वजनीन होता है, जो सार्वकालिक होता है, जो सार्वदेशिक होता है। कुदरत के कानून की वो हुकूमत जो सब पर एक जैसा काम करती है, किसी का पक्षपात नहीं करती। किसी राज्य का कानून कितना ही अच्छा कानून क्यों ना हो, हो सकता है कि उसके अमल करने में पक्षपात हो जाए, होता ही रहता है। कुदरत का कानून ऐसा है, पक्षपात हो नहीं सकता। सरकार के बनाए हुए कानून में कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो दंड से बच सकता है। बहुत तरीके लोग अपनाते हैं दंड से बचने के लिए, ये कुदरत का कानून ऐसा है, कोई दंड से बच नहीं सकता। और ये भी नहीं होता कि आज मैंने कानून तोड़ा है और किसी अगले जन्म में मुझको इसका दंड भोगना पड़ेगा, निकम्मी बात। आज कानून तोड़ा, इस क्षण कानून तोड़ा, इसी क्षण दंड मिलने लगा। बंधे बंधाए नियम है कुदरत के, इस क्षण मैंने अपने चित्त में विकार जगाया, इसी क्षण व्याकुल हो गया, तत्काल व्याकुल हो गया। नहीं कुदरत का कानून इस बात को देखता कि जरा सा लिहाज करें बेचारे का, इसने क्रोध क्यों किया, अरे बड़ी ऐसी बात हो गई थी, क्रोध नहीं करता तो कैसी बात बनती, बेचारे को क्रोध करना ही पड़ा। बेचारा वेचारा कोई नहीं होता, कुदरत के कानून में कोई बेचारा नहीं। क्रोध किया ना, दंड तत्काल भुगतना पड़ेगा, व्याकुल बन ही जाएगा, अपने को हजार हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, ब्राह्मण कहता फिरे, शूद्र कहता फिरे, भारतीय कहता फिरे, बर्मा कहता फिरे, अमेरिकन कहता फिरे, रूसी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रोध जगाया ना, तत्काल दंड मिलेगा ही। ठीक इसी प्रकार कुदरत के बंधे बनाए नियम हमने अपने चित्त को विकारों से मुक्त किया, निर्मल किया। निर्मल चित्त का सहज स्वभाव है, अनंत मैत्री से अपने आप भर उठेगा, कुछ करना नहीं पड़ता। चित्त निर्मल हो जाए फिर देखेगा अनंत मैत्री से भर गया, अनंत करुणा से भर गया, अनंत मुदिता से भर गया, अनंत समता भाव से भर गया। कुदरत का दूसरा कानून अपना काम करने लगा। जैसे ही चित्त निर्मल हुआ और अपने भीतर मैत्री जागी, पुरस्कार मिलने लगा। तत्क्षण मरने के बाद कोई पुरस्कार मिलेगा उसकी आशा नहीं, निकम्मी बात। अब क्या होता है, इसी क्षण पुरस्कार मिलना शुरू हो गया। जैसे ही मैत्री जगाई, सद्भावना जगाई, भीतर इतनी सुख शांति प्राप्त हुई, भीतर इतना अच्छा मालूम होने लगा। जैसे ही क्रोध जगाया, दुर्भावना जगाई, भीतर इतना दुखियारा हो गया। बुद्ध की संबोधि यही थी कि अरे इस कुदरत के कानून को अपने भीतर अनुभूतियों से जानो, और जानो तब मानो। बहुत लोग आते थे उनके पास और वो पूछते थे किंग मन्यसी, किंग मन्यसी, तुम क्या मानते हो, ये शरीर ये चित्त अनित्य है ना? हमारा अनित्य है। ये शरीर ये चित्त दुख का ही पुंज है ना? हमारा दुख का ही पुंज है। ये शरीर ये चित्त ये तो मैं नहीं ना, ये मेरा नहीं ना, ये मेरी आत्मा नहीं ना, अनात्मा है ना? तो कहेगा हाँ महाराज, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। तो भगवान कहेंगे ये तो मानते हो ना, अब बस जान, अब इसको देखो और जानो, कल्याण हो जाएगा। सारे जीवन भर मानते चले जाएंगे, जानने का काम नहीं करेंगे, अंधेरे में पड़े रहेंगे, बात समझ में ही नहीं आएगी। और जानने का काम इस 3.5 हाथ की काया के भीतर हो सकेगा और कहीं नहीं। अपने भीतर क्या प्रपंच चल रहा है, आदमी खूब समझता है बुद्धि के स्तर पर, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, बचपन से सुनता आया है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे राग नहीं करना चाहिए, मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, मुझे ईर्ष्या। अरे ये तो उपदेश है ना, बुद्धि से खूब समझता है, लेकिन जैसे ही कोई अवसर आया क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा खूब समझने वाला व्यक्ति भी अवसर आया तो क्रोध करता ही है, और क्रोध कर देने के बाद फिर पश्चाताप करता है, किसी परमात्मा के पास, किसी अल्लाह मैया के पास, किसी ईश्वर के पास हाथ जोड़ के कहता है महाराज मुझे क्षमा कर देना, गलती हो गई। हजार ऐसा पश्चाताप करके रह गया, फिर वैसी अवस्था आई, उतना ही क्रोध किया, फिर पश्चाताप करके रह गया, फिर वैसी अवस्था आई, वैसा ही क्रोध किया। क्यों करता है इस प्रकार, क्रोध करता है और व्याकुल होता है, दुखियारा होता है, द्वेष जगाता है, व्याकुल होता है, दुखियारा होता है, क्यों हो रहा है? अरे इसी की खोज में उस व्यक्ति ने काम किया, और ये खोज केवल उस व्यक्ति की होकर रह जाती तो हम फिर उसके नाम पर, जैसे कि बना उसके नाम पर एक दर्शन खड़ा हो जाता। जिस व्यक्ति ने सारे जीवन भर लोगों को सम्यक दर्शन सिखाया उस व्यक्ति के नाम पर बौद्ध दर्शन खड़ा हो गया। जिस व्यक्ति ने सारे जीवन भर लोगों को सांप्रदायिकता के बाहर निकलना सिखाया उसके नाम पर एक बौद्ध संप्रदाय खड़ा हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि जो काम करना था वो किया नहीं, अब विश्वास के मारे, श्रद्धा के मारे, भक्ति के मारे माने जा रहे हैं। वो कहता है कि मैंने जाना है, मैंने देखा है, तब मैं ऐसी बात कहता हूं। अरे तुम भी जानो भाई, तुम भी देखो, विपश्यना द्वारा जान करके तब मानो। क्या विपश्यना? अपने भीतर सच्चाई का यथाभूत दर्शन करना, ये भी प्रश्न। तो अपने भीतर सच्चाई का यथाभूत दर्शन किए बिना जो कुछ मानेंगे सब धोखा ही धोखा होगा, भ्रांति ही भ्रांति होगी। अपने भीतर सच्चाई को देखने लगेगा तो अरे आज तक तो ये समझते थे, बात तो कुछ और ही निकली, तब वो भी कहने लगेगा पुब्बे अनुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुंगुदपारी। अरे धर्म क्या है, कभी सुना ही नहीं इस तरह का। हमने तो जैसे आज का कोई आदमी कहे हमने तो धर्म को हिंदू धर्म यही सुना था, हमने तो हिंदू को धर्म को बौद्ध धर्म ही समझा था, जैन धर्म ईसाई धर्म यही समझा था। धर्म का अपना कोई अस्तित्व है, धर्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्ता रखता है, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो इसलिए पहले सुनना तो जरूरी है, श्रुत ज्ञान का महत्व अपनी जगह है, लेकिन श्रुत ज्ञान ही रह जाए तो खतरा हो गया, हमारे लिए एक बहुत बड़ा बंधन हो गया। श्रुत ज्ञान भी हो, उसके बाद अगला कदम उठाएं चिंतन ज्ञान भी हो, जो सुना है, आखिर मनुष्य हैं, मनन करना चिंतन करना हमारा सहज स्वभाव है, मानव पुत्र हैं मनु पुत्र हैं, मनन करना, तो उस पर मनन करेंगे चिंतन करेंगे, लेकिन फिर दीवार खड़ी हो जाएगी अगर यहीं रुक गए तो। अब अनुभव करेंगे उसी सच्चाई को जो सुनी है, हजार बुद्धि के स्तर पर ठीक लगती है, तर्कपूर्ण लगती है, लेकिन सचमुच है या नहीं ऐसे अपने अनुभव उतार के देखेंगे। उसको कहा गया भावनामयी प्रज्ञा, भावित हुई घटना, घटी अपने भीतर और उस घटना का हमने साक्षात्कार किया तो अपनी प्रज्ञा हो गई। वो ज्ञान अब सामान्य ज्ञान नहीं है, वो प्रज्ञा अब सामान्य प्रज्ञा नहीं है, संप्रज्ञान हो गया, इसी को संपन्या कहा। संप्रज्ञान अपना ज्ञान, अपनी अनुभूतियों से जागा हुआ ज्ञान। क्या ज्ञान जागता है जब अपने भीतर देखने लगते हैं? पहला ज्ञान तो ये जागता है कि भाई मैं जब जब व्याकुल होता हूँ, दुखियारा होता हूँ, तो हमेशा अपने दुखों का कारण बाहर देखता हूँ। इसने ऐसा कह दिया ना इसलिए व्याकुल हो गया, इसने ऐसा कर दिया ना इसलिए व्याकुल हो गया। मेरे दुखों का कारण कोई ना कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर की स्थिति, बाहर की घटना, बाहर की वस्तु, वो ही मेरे दुखों का कारण है। इसलिए अपने दुखों से बाहर निकलने के लिए मुझे बाहर के व्यक्ति को बदलना चाहिए, बाहर की स्थिति को बदलना चाहिए, बाहर के वस्तु को बदलना चाहिए, बाहर के वातावरण को बदलना चाहिए। अपने भीतर देखने लगता है तो पहली बात ये समझ में आती है कि मेरे सारे दुखों का कारण मेरे भीतर है, सारे दुखों का मेरे भीतर है। सच्चाई समझ में आने लगती है कि प्रतिक्षण मैं कुदरत के कानून को तोड़े जा रहा हूँ, अपने आप को बड़ा धर्मवान समझता हूँ, क्योंकि मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, गिरजाघर में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, किसी बौद्ध चैत्य पर जाता हूँ, सिर नमाता हूँ, पाठ करता हूँ, कर्मकांड पूरे करता हूँ, और बड़ा धर्मवान ना, और धर्मवान क्या हुआ करता है, बहुत धर्मवान हूँ ना मैं, जबकि बेचारे में धर्म का नामो निशान नहीं होता है, जानता नहीं धर्म क्या है। अरे तूने समझा ही नहीं धर्म क्या है रे, तो तू कैसे पालन करेगा? अंदर देखने लगता है तो सारी बात समझ में आने लगती है। क्यों व्याकुल हुआ मैं? किसी ने गाली दी तो क्या घटना घटी? बाहर किसी ने गाली दी, ये शब्द मेरे कान में आए, अब क्या हुआ? कान में शब्द आए तो क्या हुआ? तो देखता है अपने भीतर। सही विपश्य साधक होगा तो यही करेगा, उसको न कोई बौद्ध धर्म से लेन देन है, न हिंदू धर्म से, न जैन धर्म से, न ईसाई धर्म से, उसको धर्म से लेन देन है, कुदरत के कानून से लेन देन है। कुदरत किस तरह काम करती है, ये सारे प्रकृति का क्या नेचर है, क्या लॉ है, उसको जानने का काम करता है। शब्द आया है तो मेरे मानस का एक हिस्सा कहता है कोई शब्द आया है, इतने में मानस का दूसरा हिस्सा अपना सिर उठाता है, क्या शब्द आया भाई ये? कान में एक शब्द तो आया पर क्या आया? तो मानस का दूसरा हिस्सा अपनी सारी पुरानी स्मृतियों के बल पर, अपने सारे पुराने अनुभवों के बल पर उसे पहचानता है, ओ ये नारी का शब्द है, ये पुरुष का शब्द है, अथवा गाली का शब्द है, प्रशंसा का शब्द है, पहचानता है। ये मानस के दूसरे खंड का ये काम पहचानने का काम करता है। केवल पहचान के नहीं रह जाता, अब उसका मूल्यांकन भी करता है। वो गाली है, अरे बहुत बुरी। प्रशंसा है, अरे बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, उसने मूल्यांकन कर दिया। ये मानस के दूसरे हिस्से ने अपना काम किया, जो अपने पूर्व संस्कारों के आधार पर ही मूल्यांकन करेगा, अपने पूर्व संस्कारों के आधार पर ही उसे पहचानेगा। पूर्व संस्कार ही हमारे सारे गलत हों तब कोई क्या करे, देखेगा अंदर कि ये किस तरह पहचान रहा है, अपनी पुरानी अनुभूतियों के बल पर ये पहचान रहा है, फिर इसका मूल्यांकन कर रहा है, कहता है ये अच्छा है, कहता है ये बुरा है। एक वैज्ञानिक की तरह, एक शोध वैज्ञानिक की तरह वो इस चित्त के और इस शरीर के सारे प्रपंच को अपनी अनुभूतियों के स्तर पर उतार रहा है, तो देखता है कि जैसे ये मूल्यांकन हो गया, बहुत अच्छा है, प्रशंसा है, बहुत अच्छी है, तो देखिएगा सारे शरीर में एक संवेदना जागी, बड़ी सुखद संवेदना जागी। ये मूल्यांकन हो गया, ये तो बहुत बुरा है, गाली है, बहुत बुरा है, तो देखिएगा सारे शरीर में एक संवेदना जागी, बड़ी दुखद संवेदना जागी। भारत की पुरानी भाषा में वेदना केवल पीड़ा को ही नहीं कहते थे, आज तो ये शब्द 2500 वर्ष में रूढ़ हो गया। वेदना का अर्थ केवल पीड़ा, केवल दुख के रूप में होने लगा। उन दिनों की भारत की भाषा में सुखद वेदना को भी वेदना ही कहते थे, दुखद वेदना को भी वेदना ही कहते थे, अय सुखद अय दुखद वेदना को भी, न्यूट्रल वेदना को भी वेदना ही कहते थे। ये व्यक्ति अब जब मूल्यांकन हुआ तो देखता है कि वेदना जागी, पर सुखद जागी, क्योंकि मूल्यांकन अच्छा हुआ। देखता है कि मूल्यांकन बुरा हुआ तो दुखद जागी। मानस के तीसरे खंड ने, जिसका काम अनुभव करना है, वेदन शब्द का पुराना अर्थ अनुभवी होता था, अपने अनुभव से जो ज्ञान जागे वो वेद कहलाता था, क्योंकि अपने अनुभव से जाना, हमने अनुभव किया है, पुस्तक की बात नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, केवल चिंतन मनन की बात नहीं है, हमने अनुभूति से जाना है, इसलिए वेद कहलाता है अपना ज्ञान। तो अपने ज्ञान से उसने अब जाना अपनी अनुभूति से कि देख ये अनुभूति इसको बुरा मान करके क्या करने लगी, ये सुखद संवेदना आई तो उसका सुख भोगने, दुखद संवेदना आई उसका दुख भोगने लगी, आया भोक्ता भाव। तो जैसे ही सुखद संवेदना का सुख भोगने लगी, वैसे ही मानस का चौथा खंड अपना काम करने लगा, प्रतिक्रिया करने लगा, और चाहिए, ये तो और चाहिए, अरे प्रशंसा है ना, और चाहिए, ऊपर ऊपर से यूं लगता है कि मुझको प्रशंसा चाहिए, मुझको प्रशंसा और चाहिए, वास्तविकता भीतर जाने पर यह होगी मुझको सुखद संवेदना और चाहिए। ये जो सुखद संवेदना होने लगी ना, बड़ी अच्छी लगी, और चाहिए और चाहिए। ऐसे ही किसी ने गाली दी तो ऊपर ऊपर से यूं लगेगा कि मुझको गाली नहीं चाहिए, मेरे मन में जो द्वेष जागा वो गाली के प्रति जागा, तो मैंने अपने दुख का कारण उस गाली को मान लिया, गाली देने वाले को मान लिया। भीतर देखेगा तो पता लगेगा ये दुखद संवेदना जागी ना, मेरे मन में द्वेष इस दुखद संवेदना के प्रति जागी। तो अपने भीतर ये सारा प्रपंच जब देखने लगेगा और स्वयं अपनी प्रज्ञा जगा के देखने लगेगा, क्या प्रज्ञा जागती है, जो जैसा है उस पर कोई रंग रोगन नहीं आने दो, उस पर कोई कलरिंग नहीं करो, यथाभूत जैसा है वैसा है, संवेदना जागी है, बस संवेदना जागी है। अब देखें, कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि संवेदना का क्या स्वभाव है, हम देख रहे हैं, अरे कितनी ही दुखद संवेदना जागी, किसी कारण से जागी, दुखद संवेदना जागी और हम उसको साक्षी भाव से देख रहे हैं, तटस्थ भाव से देख रहे हैं, देखते देखते समाप्त हो गई ना, अनंत काल तक तो नहीं रहती। सुखद संवेदना जागी, किसी कारण से जागी, उसे देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तटस्थ भाव से यथाभूत दर्शन, यथाभूत दर्शन करने लगे तो देखते 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 ये तो नष्ट हो गई ना, खत्म हो गई ना, अनंत काल तक नहीं रहती। तो वो जो ज्ञान जागा, उस दर्शन से जो ज्ञान जागा, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से जो ज्ञान जागा, वो सम्यक ज्ञान हो गया, क्योंकि दर्शन सम्यक दर्शन हुआ। अगर हम भोक्ता भाव से कुछ देख रहे हैं तो दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान जागेगा, वही विपश्यना है और क्या है, वही संप्रज्ञान है और क्या है। देख लिए इस व्यक्ति ने अपने भीतर भीतर सारी बातों को, तो पता लगा अरे सारे लोग के 3.5 हाथ की काया में समाये हुए हैं, कहाँ नरक रे, कहाँ स्वर्ग रे, इस 3.5 हाथ की काया में सारे लोग समाये हुए हैं, इस 3.5 हाथ की काया में लोगों की उत्पत्ति समाई हुई है, इस 3.5 हाथ की काया में लोक के परे की अवस्था भी समाई हुई है, इस 3.5 हाथ की काया में लोक के परे जाने का तरीका भी समाया हुआ है, इस 3.5 हाथ की काया में ही दुख समाया हुआ है, 3.5 हाथ की काया के भीतर ही दुख का कारण समाया हुआ है, इस 3.5 हाथ की काया के भीतर ही दुख का निवारण समाया हुआ है और निवारण का उपाय समाया हुआ है। बाहर कहाँ खोजने जाएं? जहाँ बाहर खोजने गए वहीं भटक गए, जहाँ बाहर खोजने गए वहीं भटक गए। भीतर तो यथाभूत देखेंगे और बाहर तो यथावांछित देखेंगे। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं होता हमको बुरा लगता है, ऐसा हो गया हमको अच्छा लगता है। भीतर तो जो हुआ जैसा हुआ हम उसे तटस्थ भाव से देख रहे हैं। बस यही विपश्यना, सम्यक संबुद्ध की संबोधि क्या थी इसे हम समझें। कुदरत का कानून जो सब पर एक जैसा लागू होता है, उसको किन गहराइयों से इस व्यक्ति ने जाना, अपने अनुभव से जाना, भारत के लिए एक बहुत बड़ी देन थी, सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी देन थी। भारत के लोगों में और उस समय के दार्शनिकों में या उस समय के धर्म गुरुओं में ये कोई नई बात नहीं थी। बहुत लोग शील का पालन करते थे ना, करते थे, शील पालन करना चाहिए ऐसे उपदेश भी दिए जाते थे। इसमें बुद्ध की क्या देन हुई? शील की बात तो थी ही, हम चतुर्याम की बात भगवान बुद्ध की वाणी में देखते हैं। तो और लोग चतुर्याम माने 4 तरह के शील पालन करने वाले थे देश में, तो क्या दिया बुद्ध ने फिर? समाधि दी। अरे समाधि तो वो स्वयं किसी दूसरे के पास सीखने के लिए गए, 7 ध्यान ध्यान समापत्ति कहीं और सीखी, 8वां ध्यान 8वां ध्यान समापत्ति कहीं और सीखा उन्होंने। तो क्या दिया? तो प्रज्ञा दी। क्या प्रज्ञा दी? कि राग मत करो, द्वेष मत करो, सुखद हो तो उसके प्रति राग मत करो, दुखद हो उसके प्रति द्वेष मत करो, समता भाव रखो। अरे तो इसमें बुद्ध की क्या देन है? हम उस समय का साहित्य देखें तो हमें मालूम होगा वीतराग होने के लिए तो कितने उपदेश थे उस समय भारत में, वीत द्वेष होने के लिए कितने उपदेश थे। बुद्ध ने क्या दिया? बहुत बड़ी बात दी, बहुत बड़ी बात दी। वीतराग होना चाहिए, वीत द्वेष होना चाहिए, वीत मोह होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। अरे ढेर के ढेर उपदेश इस देश में, गिनती नहीं इतने उपदेश। कैसे होना चाहिए ये तो बताना चाहिए ना। मैं चाहता हूँ मैं वीतराग बन जाऊँ, मैं चाहता हूँ मेरा राग निकल जाए, मेरा द्वेष निकल जाए, मेरा क्रोध निकल जाए, मेरी वासना निकल जाए, मेरे भय निकल जाए, चित्त निर्मल हो जाए, मैत्री से भर जाए, करुणा से भर जाए। हर सामान्य समझदार आदमी ये चाहता है। चाहने से तो कुछ नहीं होता ना, हम बहुत धन चाहते हैं नहीं होता ना, हम चाहते हैं मैं लॉटरी खुल जाए नहीं खुलती ना। चाहने से क्या होता है? कैसे करें? कोई तरीका होना चाहिए, कोई विधि होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी देन उस आदमी की कि तरीका खोज निकाला और उसी को उसने धर्म कहा। पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुंग उत्पादी। क्या चक्षु उत्पादी हुआ? जब भीतर देखने लगा तो पता लगा अब तक तो ये माने जा रहा था कि बाहर के आलंबनों पर ही मुझे राग जागता है या द्वेष जागता है, बाहर से कोई रूप अच्छा लगता है या बुरा लगता है, बाहर का कोई शब्द अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, बाहर की कोई गंध मुझे अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, बाहर का कोई रस मुझे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, या बाहर का कोई स्पर्शव्य पदार्थ मुझे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, या कोई चिंतन बाहर की बात की मुझे अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, तब मैं राग जगाता हूँ। अच्छा लगता है तो राग जगाता हूँ, बुरा लगता है तो द्वेष जगाता हूँ। अब तक तो यही माने जा रहे थे, अब भीतर गया तो पता लगा नहीं नहीं नहीं, बाहर की कोई घटना और मेरे भीतर जागा हुआ राग, बाहर की कोई घटना और मेरे भीतर जागा हुआ द्वेष, इनके बीच में एक कड़ी है और वो कड़ी खो दी। वो कुदरत के कानून की एक कड़ी है उसको भूल गए। तो वो कानून की कड़ी ढूंढ निकाली इस व्यक्ति ने। सलायतन पच्चया फस्स, ये 6 इंद्रियां हैं, इनका स्पर्श होता है। सलायतन पच्चया फस्स, तब स्पर्श होगा। जिसके पास 6 इंद्रियां ही नहीं स्पर्श कैसे होगा? वो देख रहा अंदर, कैसे स्पर्श होगा भाई? जिसके पास कान ही नहीं उसको किसी शब्द का स्पर्श कैसे होगा? उसके लिए तो शब्द की कोई दुनिया ही नहीं। उस आदमी को 1000 समझाओ कि ऐसा शब्द होता है ऐसा शब्द होता, समझ नहीं पाएगा। कान है इसलिए ना शब्द का स्पर्श होता है, आँख है इसलिए रूप का स्पर्श होता है, नाक है इसलिए गंध का स्पर्श होता है, जीभ है इसलिए किसी स्वाद का स्पर्श होता है, त्वचा है इसलिए स्पर्शव्य पदार्थ का स्पर्श होता है, चित्त है इसलिए किसी चिंतन का स्पर्श होता है, तो सड़ा इतन पच्चया फस्स। अब क्या हुआ? फस्स पच्चया वेदना, जैसे ही स्पर्श हुआ शरीर पर कोई एक संवेदना जागी। आज हम वेदना शब्द जान करके नहीं इस्तेमाल करते, जब से भारत में आए आरंभ किया वेदना कहना शुरू किया, लोगों ने वेदना का अर्थ पीड़ा ही किया, कोई सुखद वेदना भी हो सकती है, ये बात ही ये शब्द ही भारत खो बैठा। 2000 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। तो स्पर्श से हमें एक संवेदना हुई, जिसका स्पर्श हुआ उसका हमने क्या मूल्यांकन किया, मानस के एक हिस्से ने जिसको उन दिनों की भाषा में संज्ञा कहते थे, पहले हिस्सा जो जो जानने का काम करता है, कोई घटना घटी, पुरानी भाषा में उसको विज्ञान कहते थे, कॉग्निशन है, कान पर कुछ आया, कुछ खटपट हुई, आँख के दरवाजे पर कुछ खटपट हुई, नाक के दरवाजे पर कि जीभ के दरवाजे पर कि त्वचा के दरवाजे पर कि मन के दरवाजे पर कुछ खटपट हुआ, तो ये हिस्सा जो कहता कुछ हुआ भाई उसको विज्ञान कहते थे। दूसरा हिस्सा जो मूल्यांकन करता है उसको संज्ञा कहते थे। क्यों संज्ञा कहते थे? वो संयुक्त ज्ञान है, जुड़ा है। किससे जुड़ा है? अपने पूर्व संस्कारों से जुड़ा है, अपने पूर्व अनुभूतियों से जुड़ा है, उस रंग से वो देखता है। रंगीन चश्मा है हमारा, यथाभूत नहीं देख पाते क्योंकि संज्ञा देख रही है ना, संज्ञा मूल्यांकन कर रही है, वो जैसा रंग का चश्मा चढ़ाया है वो ऐसे ही देखते हैं, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये नारी है, ये पुरुष है, ये काला है, ये गोरा है, ये सारा काम संज्ञा करती है ना। तो इसलिए संज्ञा ने जो रंग चढ़ाया, उस तरह की जो वेदना हुई उस पर भी वो रंग चढ़ गया। उसने कहा अच्छा है तो सुखद वेदना होने लगी, उसने कहा बुरा है तो दुखद वेदना होने लगी, और ये बावला चौथा हिस्सा प्रतिक्रिया करने लगा, राग की प्रतिक्रिया करने लगा, द्वेष की प्रतिक्रिया करने लगा। तो पकड़ में आई बात कि फस्स पच्चया वेदना, स्पर्श होने से एक वेदना होती है, सुखद हो दुखद हो, और उस वेदना की वजह से तृष्णा जागती है, राग की भी तृष्णा, द्वेष की भी तृष्णा, सुखद होती है तो कैसे इसे रोके रखूं, कैसे इसे बढ़ा लूं जो राग जागता है उसके प्रति, और दुखद होती है तो कैसे दूर कर दूं, तो दूर करने की तृष्णा, रोके रखने की तृष्णा, बढ़ाने की तृष्णा या दूर करने की तृष्णा। अरे बात समझ में आ गई, वेदना पच्चया तणहा, और जहाँ ये वेदना पच्चया तणहा का चला चक्र, तो उसके बाद तो ऐसी आसक्ति आनी शुरू हुई, और उसके बाद तो ऐसा चक्र दुख ही दुख का चलता चला गया, क्योंकि स्वभाव ऐसा हो गया, मुझे सुखद संवेदना के प्रति इतना गहरा लगाव हो गया, इतनी गहरी आसक्ति हो गई कि मुझे बार बार वो सुखद संवेदना चाहिए ही, दुखद संवेदना के प्रति इतना दुराव हो गया, इतना द्वेष हो गया कि आते ही मन एकदम दुर्मन हो जाएगा, जल्दी निकाल, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा। वो स्वभाव मेरा पुष्ट होता चला गया, तो ये मेरा स्वभाव अनुशय क्लेश अंतर मन की गहराइयों में, मेरे भवंग में, एक भव से दूसरे भव तक जो चित्त की धारा चलती है उस धारा में ये स्वभाव साथ साथ चल रहा है, स्वभाव साथ साथ चल रहा है। जब कभी कुछ अप्रिय घटना बाहर घटती है मेरे भीतर एक दुखद संवेदना जागती है, और उस दुखद संवेदना की वजह से ये जो स्वभाव मैं साथ लिए चल रहा हूँ, ये स्वभाव अपना सिर उठाता है और मैं फिर द्वेष पैदा करता हूँ। मेरे शरीर पर एक सुखद संवेदना होती है क्योंकि प्रिय घटना घटी है और ये स्वभाव साथ चल रहा है, हर सुखद घटना के प्रति वो राग पैदा करता है, और अंधे की तरह मुझे मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। जब राग जागता है तो भी व्याकुल हो जाता हूँ भीतर, द्वेष जागता है तो भी व्याकुल हो जाता हूँ भीतर, और ये जो स्वभाव शिकंजे में जकड़ गया, ये जकड़न मुझे सारे जीवन दुखी बनाए रखती है। हजार प्रयत्न करता हूँ इस दुख से दूर जाने के लिए, कहीं आमोद प्रमोद में भागता फिरता हूँ, किसी सिनेमा थिएटर में भागता फिरता हूँ, कोई टीवी खोल लेता हूँ, और गया गुजरा हूँ तो किसी शराब खाने में जा करके या और कहीं जा करके, अपने आप को बहुत अच्छा धर्मवान मानता हूँ तो किसी मंदिर में जा करके, किसी मस्जिद में जा करके, किसी देवालय में जा करके, अरे गम गलत करने की बात हुई ना, पलायन करने की बात हुई ना, कहाँ भागा तुम, क्या करने भागा? उस दुख के मूल कारण को जान भीतर, उस कारण का निवारण कर ले, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। इस व्यक्ति ने सारे जीवन भर दो ही बात सिखाई, ये दुख है और ये दुख दूर करने का उपाय है, और सारी निकम्बी बातें, वैसी आत्मा है, वैसी परमात्मा होगा भाई, होगा कोई, उससे मेरे दुख का क्या लेन देन, उससे मेरे दुख के निवारण के तरीके का क्या लेन देन होगा? ये दार्शनिकों पर छोड़ो, लड़ने दो उनको, ये संप्रदायवादियों पर छोड़ो, लड़ने दो उनको, हमको तो भाई एक वैज्ञानिक की तरह सही सही बात देखनी है, कि देख मेरे मन में, मेरे शरीर में जब कोई दुखद संवेदना जागती है तो मेरा पागल मन उसके प्रति राग पैदा करना शुरू कर देता है और बड़ा व्याकुल हो जाता है। मेरे शरीर में कोई दुखद संवेदना जागती है, मेरा पागल मन द्वेष पैदा करना शुरू कर देता है, बड़ा व्याकुल हो जाता है। ये जो दुख चक्र चल रहा है, ये जो लोक चक्र चल रहा है, जो भव चक्र चल रहा है, ये वेदना पच्चया तणहा की वजह से चल रहा है। इसे पलटे ना, होश आने लगेगा तो पलटेगा, तो वेदना पच्चया संपजन्य होने लगेगा, प्रज्ञा जागेगी। अब तो देखेगा, अरे अनित्य है ना, देख तो सही, ये वेदना जागी है, देख तो सही कितनी देर रहती है। और आगे जाकर तो यूं लगेगा प्रतिक्षण उसमें उत्पाद व्यय सिवाय तरंगों के और कुछ नहीं, घनीभूत होकर के आती है। तो यूं लगता है कि न जाने सिर पर क्या भूत सवार हो गया। जब उसको देखने लगे साक्षी भाव से, उसके टुकड़े होने लगे, विभाजन कर करके, विभज्येन पश्यति इति विपश्यन, विविधेन पश्यति इति विपश्यन, विचयेन पश्यति इति विपश्यन, टुकड़े करता है। जो सच्चाई सामने आए उसके टुकड़े करके देखता है, अरे तरंग ही तरंग है, क्या है इसमें, क्या अच्छा माने, क्या बुरा माने इसको, तो होश ठिकाने आता है, अपने उस स्वभाव को पलटने लगा। जब तक राग रंजित रहने का स्वभाव है, तब तक स्वयं भी दुखी रहेगा, औरों को भी दुखी बनाएगा, ये स्वभाव है राग का। जब तक द्वेष दूषित रहने का स्वभाव है, स्वयं भी दुखी रहेगा, औरों को भी दुखी बनाएगा। उपदेश तो हजार सुनते हैं, कैसे राग के बाहर निकलें, कैसे द्वेष के बाहर निकलें, होता क्या है, कौन निकला इन उपदेशों से? अगर इन उपदेशों से ही लोग निर्मल चित्त हो जाते तो भारत तो पहला देश होता जिसके सारे लोग निर्मल चित्त होते। बचपन से उपदेश सुनते आए हैं, बचपन से सुनते जा रहे हैं, कुछ असर नहीं पड़ता ना। क्यों नहीं पड़ता? कि जाना नहीं, केवल माना ही माना। और ये विपश्यना ज्ञान हमको जानना सिखाता है, जानो इसे, जाने बिना मत मान लेना, बिना जाने मत मान लेना, धोखे में आ जाओगे। जानोगे तो सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी, बात ही बदलती चली जाएगी। वेदना पच्चया तणहा, अब वेदना पच्चया संपजन्य, वेदना पच्चया पन्या होने लगेगा। अनित्य है ना, देख अनित्य है ना, उत्पाद होता है, व्यय होता है, देख तो सही, उत्पाद होता है, व्यय होता है, स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा, आदमी निर्मल चित्त होता चला जाएगा। और निर्मल चित्त होता चला जाएगा तो उस पर कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं, अब तुम मैत्री का चित्त लाओ कि करुणा का चित्त लाओ, अरे निर्मल चित्त स्वभाव से मैत्रीपूर्ण होता है, करुणापूर्ण होता है। ये तो बाहर से हमने जो गंदगी पैदा कर दी, चित्त अपने आप में बड़ा निर्मल है, बड़ा निर्मल है, बड़ा प्रभास्वर है, और उसमें जो गंदगी डाली उससे गंदा हो गया, मैला हो गया। ये गंदगी निकल जाए, वो अपने सहज स्वभाव में आ जाएगा, स्वयं में स्थित हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। स्वयं में नहीं स्थित है, क्योंकि इसकी जो गंदगी आ गई उसमें स्थित हो गया, दुखियारा हो गया, व्याकुल हो गया। तो सारी की सारी विद्या की अपने भीतर हम सच्चाई को देखते हुए अपने आप को इस गंदगी से कैसे मुक्त करें। अगले जन्म में हमको कुछ मिल जाएगा, कोई स्वर्ग मिल जाएगा, कोई ब्रह्मलोक मिल जाएगा, कोई लेन देन नहीं उससे। अब क्या मिलता है? इस जन्म में तुम्हें कुछ मिलता नहीं, इस जन्म में तुम्हारा कोई लाभ होता नहीं, इस जन्म में जरा सा भी सुधार होता नहीं, और आश लगाए बैठे हो मरने के बाद तो किसी की कृपा हो जाएगी, किसी देवी की, किसी देवता की, किसी ईश्वर की, किसी ब्रह्म की, किसी अल्लाह मियाँ की, किसी बुद्ध की, किसी महावीर की, किसी की तो कृपा हो जाएगी हम पर। आखिर हम इतना नमस्कार करते रहे उनको, इतनी उनकी जय जयकार बोलते रहे, तो कुछ तो उनकी कृपा होगी। मरने के बाद जरूर मुझे तो कोई बचा ही लेगा रे, मुझे तो कोई बचा ही लेगा रे। बेचारे को धर्म नहीं आया ना, उसे हिंदू धर्म आया जरूर, उसको बौद्ध धर्म आया, उसको जैन धर्म आया, उसको ईसाई धर्म आया, उसको धर्म नहीं आया। जिसको धर्म आ जाएगा ये सारे छिलके से लगने लगेंगे। अरे ये निकम्मी बातें, काम की बात करना, कुदरत के कानून को समझना। तू अपने मन को जब तक विकृत करता जाएगा तुझे दुख मिलता ही जाएगा, अब भी और भविष्य में भी, क्योंकि तेरा स्वभाव ऐसा हो जाएगा ना। जितनी बार तू मन को दुर्मन करेगा उतनी बार अपने स्वभाव को तू और मजबूत किए जा रहा है, उस स्वभाव शिकंजे में और जकड़ा जा रहा है। इसके बाहर निकलना, और इसके बाहर निकलने का तरीका है ना, इतना वैज्ञानिक तरीका, कोई भी कर सके, कोई भी कर सके। इसीलिए धर्म को कोई विशेषण लगना ही नहीं चाहिए, धर्म को अपने शुद्ध रूप में रखना है तो उसे केवल धर्म ही कहना चाहिए, तो लोक कल्याण होगा, बहुत बड़ा कल्याण होगा। क्योंकि उसे बौद्ध धर्म कहेंगे तो बौद्धों का हुआ ना, उसे हिंदू धर्म कहेंगे तो हिंदुओं का हुआ ना, उसे मुस्लिम धर्म कहेंगे तो मुसलमानों का हुआ ना, ईसाई धर्म कहेंगे तो ईसाइयों का हुआ ना, सिख धर्म कहेंगे सिखों का हुआ ना। अरे धर्म तो सबका भाई, कुदरत का कानून तो सबका है। मुझे मलेरिया हो जाए तो उस पर क्या लेबल लगाऊंगा, ये हिंदू मलेरिया हुई, अब के बुद्धिस्ट मलेरिया हुई, कि अब के क्रिश्चियन मलेरिया हुई, क्या लेबल लगाऊंगा। और उस मलेरिया को दूर करने के कुनेन लेता हूं और उससे मेरी मलेरिया दूर कर लेता हूं तो उस कुनेन को लेबल लगाऊंगा कि ये अब के तो ये बौद्ध कुनेन ली हमने, ये हिंदू कुनेन है, ये मुस्लिम कुनेन है, ये जय, अरे क्या कुनेन, कुनेन कुनेन है, रोग रोग है, औषधि औषधि है, सबके लिए एक जैसा काम करती है। रोग ये है कि मैं अपने भीतर संवेदनाओं को न जानने के कारण जब देखो तब राग पैदा किए जा रहा हूँ, द्वेष पैदा किए जा रहा हूँ। ये राग पैदा करना, ये द्वेष पैदा करना बुद्धिस्ट लोगों की मोनोपोली तो नहीं ना, जैनियों की मोनोपोली तो नहीं ना, हिंदुओं की मोनोपोली तो नहीं ना, ये दुखी हो जाना किस संप्रदाय की मोनोपोली है। सार्वजनिक रोग है भाई, यूनिवर्सल मेलेडी है कि हम विकारों से प्रतिक्रिया करते हैं, राग पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, हम रोगी हो गए, हम दुखियारे हो गए। सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है, सब पर एक जैसा लागू होता है। और इसे पलटते, संवेदना तो जागे पर हम राग नहीं जगाएं, संवेदना तो जागे हम द्वेष नहीं जगाएं, तो ये काम करना केवल बौद्धों का है, हिंदुओं को नहीं करना चाहिए, कि जैनियों को नहीं करना चाहिए, कि ईसाइयों को नहीं करना चाहिए। अरे सबको करना चाहिए ना भाई, जो दुखियारा है उसको दुख के बाहर निकलने का रास्ता मिला, सभी करेंगे ना, करेंगे अच्छे आदमी बन जाएंगे, हिंदू अच्छा हिंदू बन जाएगा, बौद्ध अच्छा बौद्ध बन जाएगा, जैन अच्छा जैन बन जाएगा, ईसाई अच्छा ईसाई बन जाएगा, मुसलमान अच्छा मुसलमान बन जाएगा, क्योंकि अच्छा इंसान बन जाएगा। अरे जो अच्छा इंसान ही नहीं है वो अच्छा हिंदू कैसे होगा, वो अच्छा बौद्ध कैसे होगा, अच्छा ईसाई कैसे होगा, अच्छा मुसलमान कैसे होगा, अच्छा भारतीय कैसे होगा, अच्छा बर्मी कैसे होगा, अच्छा अमेरिकन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता ना, अच्छा इंसान नहीं है ना। विपश्यना हमें अच्छा इंसान बनाने की एक विद्या सिखाती है, केवल बुद्धि विलास करके नहीं चले जाएं, बहुत बड़ा धोखा होगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव सयाजी उबाखेन, जिनकी ये 20वीं मृत्यु का वर्ष आरंभ हो रहा है, तो उनकी बार बार बात याद आती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस शुड गो टुगेदर। केवल थ्योरी थ्योरी को मानता चला गया, बुद्ध ने कहा ना, बुद्ध ने कहा ना, वेदना पच्चया तन्हा, बहुत खराब है, नहीं होना चाहिए, वेदना पच्चया पनिया, ये होना चाहिए, पर करते तो नहीं ना, तो क्या हुआ, मान लेने से हुआ क्या, तुम्हें क्या मिल गया। तो थ्योरी को जरूर समझो पर प्रैक्टिस के साथ समझो, अन्यथा धोखा हो जाएगा। इसीलिए केवल बुद्धि विलास के लिए ऐसे धर्म सम्मेलन नहीं बुलाए जाते। जिस दिन विपश्यना बुद्धि विलास का विषय बन जाएगा उस दिन विपश्यना विपश्यना नहीं होगी, वो भी एक संप्रदाय बन जाएगा। कुछ दिनों के बाद, 2-3 पीढ़ियों के बाद ही ये हालत हो सकती है जब एक व्यक्ति अपने आप को इसलिए विपश्यी कहेगा कि उसका बाप भी अपने आप को विपश्यी कहता था, उसका दादा भी अपने आप को विपश्यी कहता था, उसको विपश्यना करने का जरा सा समय भी नहीं, अपने को विपश्यी कहेगा, तो संप्रदाय बन गया ना। जो काम हमको अपनी अनुभूति से जानने का था उसको हमने मानने का काम कर लिया, श्रद्धा के साथ मान रहे हैं, अंधभक्ति के साथ मान रहे हैं, बहुत हुआ तो चिंतन मनन करके मान रहे हैं, खूब तर्क लगा के मान रहे हैं, जानने का काम रह गया, जानो और तब मानो तो कल्याण शुरू हो जाएगा। नहीं जान रहे हैं, केवल माने जा रहे हैं, अपने को धोखे में डालते चले जाएंगे, क्योंकि एक धोखा ये होगा, मैं तो खूब जानता हूँ ना, अरे विपश्यना तो बहुत जानता हूँ मैं, ये धर्म की बात तो मैं बहुत जानता हूँ, राग नहीं करना चाहिए बहुत जानता हूँ, द्वेष नहीं करना चाहिए बहुत जानता हूँ, जानता ही जानता हूँ, मानता मानता कुछ नहीं। अपनी बात कहूँ, बहुत कट्टर हिंदू घर में जन्मा, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, और बचपन से ही गीता का पाठ, जो एक अध्याय का पाठ करते ही जहाँ एक जन्म का पाप कट जाए, 18 अध्याय का कर ले तो न जाने कितने जन्मों का पाप कट जाएगा, सारे पाप कट जाएंगे। ये लेप बुद्धि पर बचपन से लगाया गया, तो खूब पाठ किया, यही नहीं समझ रहे थे क्या पाठ कर रहे हैं।
पहले तो यही नहीं समझ रहे थे कि आप क्या पाठ कर रहे हैं,
और समझ भी लिया तो क्या काम आया भाई,
उसको कैसे धारण करें। धारण करें तो धर्म नहीं, कैसा धर्म, धारण करना ही नहीं सिखाया तो क्या हो। तो एक एक श्लोक का पाठ करते थे बार बार, करते होंगे और लोग भी।
उत्क्रमन्तं चित्तं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः।
विमूढ़ आदमी नहीं देख सकता, विमूढ़ लोग जान ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। जो चक्षुवान है, जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए, वो देख पाएगा। तो पहले तो ये बात ही नहीं समझ में आती थी, ज्ञान चक्षु क्या खुलेगा भाई। तो सोचते थे कभी कभी हमारे भीतर भी ऐसे कोई आंखें होगी जो बंद हैं, और भीतर भीतर खुल जाएगी, और पता नहीं क्या क्या दिखने लगेगा अंदर। कभी होगा, किसी की कृपा हो जाएगी, हमारे भी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। क्या ज्ञान चक्षु होते यही नहीं जानते थे। और फिर ये क्या चार बात कह दी, उत्क्रामंतंग स्थितंग वापी भुंजानंग वा गुणान्वितंग। अरे इस विपश्यना में से गुजरे तो बात समझ में आई कि व्यक्ति विपश्यना की बात करता है, करा नहीं सका, बात तो विपश्यना की करता है ना। उत्क्रामंतंग, मानस का एक खंड अपना सिर उठाता है, किसी इंद्रिय पर कुछ खटपट हो जाए, आँख पर, नाक पर, जीभ पर, त्वचा पर, मन पर, तो ये मानस का हिस्सा कहता कुछ हुआ भाई, तो सिर उठा के कहता उत्क्रामंतं, ये खड़ा हुआ। उत्क्रामंतं स्थितं, और दूसरा रुकता है, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये शब्द आया तो क्या शब्द आया, रूप आया तो क्या आया, गंध आई तो क्या आई, रस आया तो क्या आया, स्पर्शव्य पदार्थ क्या है, मन पर विचिंतन आया तो क्या हुआ। यूं रुक करके उसका मूल्यांकन करता है, उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं। अब जो संवेदना जागी उसका भोग भोगने लगा, सुखद जागी तो सुख भोगने लगा, दुखद जागी तो दुख भोगने लगा। भुंजानंग भुंजानंग तो गुणान्वितंग गुणान्वितंग लगा बंधने, लगा बंधने। अरे ये सारे बंधन क्यों होता है, हम व्याकुल कैसे होते हैं, अपने आप को दुखियारा कैसे बना देते हैं, वो सारी बात समझाई, पर पहले तो समझ में नहीं आवे, और आ भी गई मान लो तो कैसे इसके बाहर निकले, हमें तो पता ही नहीं भीतर कब तो संवेदना जागी और कब संवेदना पर हमने प्रतिक्रिया भी कर दी। ये बहुत बड़ी देन बुद्ध की कि उसने तरीका बताया, कोरी बातें नहीं, कोरा उपदेश नहीं बुद्ध के पास। अगर कोरा उपदेश देने वाला है तो कोई ज्ञानी होगा, बुद्ध नहीं होगा। तो संबोधि प्राप्त किए, संबुद्ध हुआ है, अपनी बोधि से, अपनी अनुभूति से कुदरत के कानून को, धर्म को समझ गया है। वो धर्म जो पहले कभी जानता ही नहीं था, सुना ही नहीं, जिसके बारे में पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्खुंगुदपादि, और वो प्रज्ञा प्राप्त होने पर, बोधि प्राप्त होने पर अपने पूर्व जन्मों को देखता है, अरे भूतकाल को देखता है, तो कहता है पुराणो मग्गो पुराणो मग्गो। अरे बड़ा पुराना मार्ग है, तो बड़ा पुराना मार्ग है, ईस धम्मो सनंतनो ईस मग्गो सनंतनो, ये तो सनातन है। धर्म तो सनातन ही होता है, जब हिंदू हो जाता है तो सनातन नहीं रहता, बौद्ध हो जाता है तो सनातन नहीं रहता, जैन हो जाता है तो सनातन नहीं होता, सामयिक होता है, एक समय का एक धर्म। हमारी ऐसी मान्यता, हमारे ऐसे कर्मकांड, हमारी ऐसी फिलॉसफी, कुदरत का कानून तो हमेशा एक सा रहेगा। आज के 10,000 वर्ष पहले भी आग इसी तरह जलती थी, आज के हजारों वर्ष पहले भी बर्फ इसी तरह ठंडा करती थी, ठंडा होती थी, आज भी ऐसा ही है, भविष्य में भी ऐसा ही होगा। आज भी हम विकार जगाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और दूसरे को व्याकुल करते हैं, हजारों वर्ष पहले भी यही होता था। जो व्यक्ति अपने भीतर विकार जगाए, राग जगाए, द्वेष जगाए, व्याकुल हो जाएगा, औरों को व्याकुल करेगा। आज के हजारों वर्ष के बाद भी कोई आदमी अपने भीतर राग जगाए, द्वेष जगाए, व्याकुल ही हो जाएगा। इस बात को भी केवल बुद्धि से मान के रह जाएंगे तो क्या मिलेगा, फिर एक निकम्मी बात हो जाएगी। इसी को अनुभूति से जानना शुरू कर देंगे। आग पर हाथ रखा, जलाना, तो दूसरी बार आग पर हाथ रखते हुए जरा सजग रहेगा, आग पर हाथ रखता हूँ तो जलता हूँ, राग जागाना तो जलाना, द्वेष जागाना तो जलाना, अनुभूति होने लगी। अब जलता तो पहले भी था, पर ये बावला मन, ऊपर ऊपर का चित्त, जिसे भगवान बुद्ध ने कहा परित्त चित्त, आज का पश्चिमी मनोवैज्ञानिक कहता है कॉन्शियस माइंड। भारत में उस समय भारत की भाषा में ये शब्द नहीं इस्तेमाल होते थे, वैसे हम कहते हैं आज कि ये चेतन चित्त, अर्धचेतन चित्त, अचेतन चित्त। कोई अर्धचेतन अचेतन नहीं होता, जो भीतर वाला है वो भी उतना ही चेतन है, खूब सजग है, लेकिन दोनों के बीच में दीवार पड़ी है। जिसको हम चेतन चित्त कहते हैं उसे पता नहीं कि भीतर भीतर क्या हो रहा है, मेरे अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पर क्या हो रहा है। अचेतन चित्त जो चेतन अचेतन नहीं है वस्तुतः, वो संवेदनाओं को जान रहा है और प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रतिक्षण संवेदना को जानता है, प्रतिक्रिया करता है, संवेदना को जानता है, प्रतिक्रिया करता है, राग की करता है, द्वेष की करता है और व्याकुल भी जा रहा है। और ऊपर ऊपर से हम इस धोखे में हैं, हमारे में तो कोई राग नहीं है, मुझ में कोई राग नहीं, मुझ में कोई दोष नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, मैं बड़ी समता वाला व्यक्ति हूँ। अरे तूने अपने भीतर जांचा, खोज की अपने भीतर सच्चाई की? जिस दिन अपने भीतर खोज करने लगेगा उस दिन यथाभूत ज्ञान जागेगा। ये मान्यताओं वाला ज्ञान नहीं, ये दार्शनिक मान्यताओं वाला ज्ञान नहीं, ये पुस्तकों वाला ज्ञान नहीं, ये हमारी परंपराओं वाला ज्ञान नहीं, अनुभूति वाला ज्ञान जागेगा। और अनुभूति का ज्ञान जागेगा तो रास्ता खुल जाएगा मुक्ति का। किस मुक्ति का? विकारों से मुक्ति का। और विकारों से मुक्त हो जाएगा, जीना आ जाएगा, जीना आ ही जाएगा। जैसे जैसे भीतर सच्चाई को देखता है, ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि राग जागता है तो वेदनाओं पर जागता है, संवेदनाओं पर जागता है, द्वेष जागता है तो संवेदनाओं पर जागता है, आसक्ति है तो इन संवेदनाओं के प्रति है, तो खूब समझ में आने लगता है। यहाँ आसक्ति टूटी कि बाहर की सारी आसक्ति अपने आप टूट जाएगी। शिविरों में आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अल्कोहलिक आते हैं, बेचारे कितना प्रयत्न करते हैं कैसे निकलें, और एक शिविर लेता है, दो शिविर लेता है, तो बात समझ में आने लगती है कि मुझको अल्कोहल से, शराब से आसक्ति नहीं है, धोखा है ये तो, लगता है, ऊपर ऊपर की बात है, अपेरेंट ट्रुथ है। सही ट्रुथ ये है कि मुझको उस अल्कोहल लेने से सेंसेशन जो होती है, उस सेंसेशन के प्रति मेरे मन में आसक्ति है, उसी सेंसेशन को मैं समता भाव से, तटस्थ भाव से देखने लगूं, आसक्ति टूटती चली जाएगी। बड़ी आसानी से अल्कोहलिक बाहर निकलते हैं, ये ड्रग एडिक्ट्स बाहर निकलते हैं। अरे किसको हम अल्कोहलिक कहें, किसको हम ड्रग एडिक्ट कहें, सारे के सारे तो अल्कोहलिक हैं ना, हम सब नशे में हैं। इसीलिए एक शब्द भारत में इस्तेमाल हुआ, आश्रव। श्रव कहते हैं बहाव को, आश्रव बहने लगा कुछ, जिसका बहने लगा वो बड़ा व्याकुल है, नशा है। आश्रव शब्द का एक अर्थ बहाव और आश्रव शब्द का एक अर्थ नशा। द्राक्षाश्रव जो ग्रेप से वाइन बनती है वो, उसको भी आश्रव कहें। नशे का कोई पदार्थ हो उसको भी आश्रव कहेंगे, और जो बहाव बहता है उसको भी आश्रव कहेंगे। ये शब्द इस अर्थ में क्यों चले, कभी जाना ही नहीं, अपने भीतर कभी देखा नहीं, देखने लगता है तो जानता क्या आश्रव है और क्या नशा है उसका। जैसे ही मन में क्रोध जगाता हूँ, वैसे ही मन और शरीर इस कदर जुड़े हुए हैं, जैसे ही मन में क्रोध जगाया भीतर एक बायोकेमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया, एक तरह की बायोकेमिकल का फ्लो होना शुरू हो गया। मेरी रक्त वाहिनी शिराओं में रक्त के साथ साथ एक तरह का केमिकल बहने लगा, आश्रव हुआ, और वो आश्रव ने बड़ी दुखद संवेदना पैदा की। तो दुखद संवेदना इसलिए पैदा हुई कि मैंने क्रोध किया ना, क्रोध किया तो इस तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ और वो हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने और क्रोध किया, हमने और क्रोध किया तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन और हुआ, अन्योन्याश्रित हो गए, एक दूसरे को सहारा देने लगे, दुष्चक्र चल पड़ा, दुष्चक्र चल पड़ा। ये केवल क्रोध की बात नहीं है, कोई विकार मन में जगा ले उसके अनुसार एक तरह की केमिकल रिएक्शन शरीर में होनी शुरू हो गई। उसको भगवान ने देखा और कहा ये वेदना है, शरीर में एक अनुभूति होने लगी, ये आश्रव हैं, और उन आश्रवों के प्रति इतना चिपका हो गया, नशा है। क्रोधी को क्रोध का नशा हो गया, बार बार अनचाही बात होने पर वो नशा है ना क्रोध का, फिर नशा करता, फिर क्रोध करता है, जानता है क्रोध होने से व्याकुल हो जाता हूँ, फिर नशा करता है। काम वासना जागती है, व्याकुल होता है, फिर भी इस तरह का केमिकल चला है, फिर काम वासना जगाता है। भय जागता है, फिर भय जगाता है, नशा हो गया ना। तो आश्रव नशा ही है, अनासवो आश्रव खत्म हो गया, थीणासवो आश्रव समाप्त हो गया, अब इस आदमी के कोई इस तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन होता ही नहीं, मुक्त हो गया, विकारों से मुक्त हो गया। तो भाई ये तो प्योर साइंस की बात है ना, विज्ञान की बात है ना, इसमें हिंदू धर्म क्या करेगा, इसमें बौद्ध धर्म क्या करेगा, इसमें जैन धर्म क्या करेगा। जो क्रोध जगाएगा इस तरह का आश्रय उसमें चलने ही लगेगा, जो द्वेष जगाएगा आश्रय उसे चलने ही लगेगा, जो ईर्ष्या जगाएगा काम वासना जगाएगा उसमें आश्रय चलेगा ही, उस आश्रय का रिएक्शन करेगा और व्याकुल होगा और व्याकुल होगा, और आश्रय चलेगा और आश्रय चलेगा और व्याकुल होगा। दुष्चक्र चलना, विशेष सर्कल चल पड़ा ना, कहाँ तोड़े इस विशेष सर्कल को। बुद्ध ने विशेष सर्कल तोड़ने का रास्ता बताया कि तुम्हारे पुराने जितने स्वभाव हैं, जो अनुशय क्लेश हैं, जो अनुशय स्वभाव है तुम्हारा, वो बार बार अप्रिय के प्रति सिर उठाएगा। तुमको अप्रिय संवेदना होते ही तुम्हारे भीतर दोष जागेगा, दुर्मन होगा, और उसी वक्त तुम्हें होश जागेगा। देख ये तो अनित्य है ना, देखें तो इसको कितनी देर रहता है। तो जो इन संवेदनाओं की वजह से द्वेष जागा था, अब वो दुर्बल होने लगा, दुर्बल यूं दुर्बल होते होते समाप्त हो गया। सुखद संवेदना आई, राग जागा, क्योंकि राग का बहुत बड़ा अनुशय भीतर है, वो अनुशय ने सिर उठाना शुरू किया और हम देखते रह गए। अनित्य भाई, देख तो सही, अनित्य है ना, ये उत्पाद होता है, व्यय होता है, उदय होता है, व्यय होता है, तू देख तो सही। देखते देखते देखते, अरे वो देखते देखते जो हमारा ये केमिकल फ्लो होना वो बंद हो गया, वो बंद हो गया, तुम्हारे विकार बंद हो गए। वैज्ञानिक बात है, रोगी आदमी तो रोगी आदमी है। कोई रोग किसी को लगता है तो वो ये नहीं देखता कि ये आदमी अमुक मान्यता को मानने वाला है, अमुक परंपरा वाला है, अमुक संप्रदाय वाला है, अमुक जाति वाला है। रोग तो रोग है, दुखी बनाएगा ही। तो दुख सार्वजनीन है, रोग सार्वजनीन है, राग पैदा करना, द्वेष पैदा करना सार्वजनीन है, यूनिवर्सल बात है। इसके बाहर निकलने का उपाय सेक्टेरियन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये रोग सार्वजनीन है तो इसका उपाय भी, उसके बाहर निकलने का उपाय भी यूनिवर्सल ही होगा। ये ढूंढ निकाला, यूनिवर्सल उपाय ढूंढ लिया। क्या उपाय ढूंढ लिया? अपने भीतर सच्चाई देखनी है तो अच्छा भाई कहाँ शुरू करें? तो कहा सांस से शुरू कर। तो पहला काम ये दिया, तू सांस को देख, आता है तो आता है, जाता है तो जाता है, बस पहला कदम। इस क्षण की ये सच्चाई, उसका कोई मूल्यांकन नहीं। सांस आता है तो कहाँ राग जगाओगे? आता है भाई, और चाहिए नहीं करोगे ना। और सांस जाता है तो चले जाए, हमको नहीं अच्छा लगता, द्वेष नहीं जगाओगे ना। यथाभूत, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, गहरा है तो गहरा है, छिछला है तो छिछला है, हम तो उसको तटस्थ भाव से देख रहे हैं। क्या होने लगा इससे? एक तो वर्तमान में जीने का पहला पाठ हमारे सामने आया। इस क्षण की ये घटना है, मेरे 3.5 हाथ की काया के भीतर, जबकि मैं पालथी मार के आँख बंद करके मुंह बंद करके बैठा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा, न शरीर का न वाणी का, तब हो क्या रहा, घटना क्या घट रही है? पहली घटना ये कि शरीर में सांस आ रहा है, जा रहा है, बस यहीं से शुरू कर। उसको देखते 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 बात समझ में आने लगी कि जब जब चित्त में विकार जागता है, सांस अपनी स्वाभाविकता खो देता है। क्रोध जागे, द्वेष जागे, भय जागे, ईर्ष्या जागे, स्वाभाविक नहीं रहेगा, तेज हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और जैसे विकार निकल गया फिर स्वाभाविक हो जाएगा। अरे तो मेरे सांस का मेरे मन से बड़ा गहरा संबंध, मेरे सांस का मेरे मन के विकारों से बड़ा गहरा संबंध। कुदरत की एक बात समझ में आने लगी, एक कानून समझ में आने लगा, एक रीत समझ में आने लगी, तो धर्म समझ में आने लगा। बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, धर्म समझ में आने लगा। मेरे सांस का मेरे मन से और मेरे मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन सांस को देखते देखते देखता है, इस स्थान पर कुछ संवेदना भी हो रही है। सुरसुराहट सी होती है, झंझनाहट सी होती है, धड़कन सी होती है, फड़कन सी होती है, गर्मी सी होती है, पसीना सा होता है। अब तक तो यही आदत थी, प्रतिक्रिया करते थे, पसीना सा हुआ पहुँच लिया जल्दी से, खुजलाहट है जल्दी खुजला लिया, नहीं अच्छी लगी ना, अंतर्मन को नहीं अच्छी लगी, अनकॉन्शियस कहते हैं उसको, नहीं अच्छी लगी, उसने द्वेष पैदा किया, उसे उसका प्रतिक्रिया कर दी। आप सीखते हैं ना, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, देखेंगे उसे, खुजली आए तो देखेंगे कितने समय तक रहती है, अनंत काल तक तो रहती नहीं, खुजली आई है, देखते 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 समाप्त हो गई। अपना स्वभाव पलटने का काम कर रहे हैं, वो स्वभाव जो अप्रिय के प्रति हमेशा द्वेष ही पैदा किया करता था, अब उसे देखने लगा, साक्षी भाव से देखने लगा। यूँ देखते देखते एक बात और समझ में आई कि ये शरीर पर जितनी संवेदनाएं चल रही हैं, इनका हमारे मन से और मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध है। चित्त जो कुछ धारण करता है, उसे पुरानी भाषा में धर्म कहा, उसको धारेति इति धम्म, सब्बे धम्मा वेदना समूसरण, चित्त में जो कुछ धारण कर लो वो एक वेदना के रूप में ही भाव होगा, उसका एक भाव शुरू हो जाएगा। अरे इसलिए संवेदना को देखना सिखाया किसी व्यक्ति ने, उसको तो सच्चाई का अनुभूति के स्तर पर दर्शन करने का रास्ता सिखाना था। बौद्ध नहीं बनाना था किसी को, जैन नहीं बनाना था, हिंदू नहीं बनाना था। दुखियारे हैं, बड़े करुण चित्त से, इनको पता नहीं इसलिए दुखियारे हैं। ये विद्या मिल जाएगी, अपने दुखों के बाहर आ जाएंगे। हिंदू हिंदू रहे, जैन जैन रहे, बौद्ध बौद्ध रहे, ईसाई ईसाई रहे, अच्छा आदमी बन जाएगा। अंदर से सुखी होगा, सौमनस्यता होगी तो सद्भावना होगी, अंदर से दुखी होगा, दुर्मन होगा, दौर्मनस्यता होगी तो दुख पहुंचाएगा औरों को, स्वयं भी दुखी होगा, औरों को भी नुकसान पहुंचाएगा, अच्छा आदमी बनने का रास्ता मिल गया। जैसी जैसी स्वभाव पलटता चला जाएगा इन्हीं संवेदनाओं को देखते देखते, देखते हैं कि विकार निकलने शुरू हो गए। बड़े से बड़े गुस्सा वाला व्यक्ति दो चार पांच शिविर के बाद देखता, अब मेरा गुस्सा कम हो गया। बहुत वासना में व्याकुल रहने वाला व्यक्ति देखता, मेरी वासना कम होने लगी। जुआरी जुए से मुक्त होने लगता है, व्यभिचारी व्यभिचारी से मुक्त होने लगता है, शराबी शराब से मुक्त होने लगता है, गुस्सेल गुस्से से मुक्त होने लगता है, ईर्ष्या वाला ईर्ष्या से मुक्त होने लगता है, अहंकार वाला अहंकार से मुक्त होने लगता है। तो भाई सार्वजनीन है ना ये रोग भी, सार्वजनीन ये विद्या भी सार्वजनीन। जब सांस को देखना सिखाया जाता है तो कहाँ कहेंगे हिंदू सांस है ये, कि ये तो मुसलमान सांस है, कि ये तो बौद्धों का सांस है, क्योंकि ये तो बौद्ध लोग करते हैं ना इसलिए बौद्धों का सांस है ये, ऐसा तो नहीं कहते ना। सांस सांस है, न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न ब्राह्मण है, न कुछ है, सांस सांस है। ऐसी संवेदना जब शरीर पर आई तो हम संवेदना को देख रहे हैं, उसके अनित्य स्वभाव को देख रहे हैं, तो ये संवेदना का क्या नामकरण करेंगे, बौद्ध संवेदना है कि हिंदू संवेदना है कि जैन संवेदना है। अरे धर्म है, स्वभाव है, स्पर्श होता है तो संवेदना होगी ही, और स्पर्श होता है संवेदना होगी तो अब क्या होने लगा, और राग जगाने का स्वभाव बना लिया, देख द्वेष बनाने का स्वभाव बना लिया, और उसको अनित्य रूप में देख रहे हैं तो राग कम होने लगा, द्वेष कम होने लगा, धीरे धीरे दूर होने लगा, विकार कम होने लगा। अरे सार्वजनिक बात हुई ना भाई, यही एकमात्र कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग भिन्न भिन्न संप्रदायों से आते हैं और उनको लगता है तो अपनी ही बात है। शुरू शुरू में तो कान में जब बात पड़ती है भगवान बुद्ध का मार्ग है, अरे बौद्धों का मार्ग है, ये तो बौद्धों का मार्ग है, शुरू शुरू में ऐसा होता है। मुझे भी हुआ, जब पहली बार अपने गुरु के पास जाने की बात आई तो यूँ हुआ कि भाई ये तो बौद्ध हैं, बड़े नास्तिक हैं, अरे आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, अरे बाबा मैं भी कभी नास्तिक हो जाऊंगा तो न जाने कैसे घोर नरक में पड़ूंगा, ना बाबा ना, हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना। बड़े भाग्य की बात हुई कि उसमें से गुजरा तो भारत की अनमोल संपदा सामने आई, ऐसा वैभव भारत का जिसकी वजह से भारत विश्वगुरु बना। अपने आप को आज हजार विश्वगुरु कहते फिरे, जगत गुरु कहते फिरे, कौन मानता रे तुम्हें, कौन पूछता है, तुम्हारे संप्रदाय वाले पूछते हैं ना कैसे विश्वगुरु हुए। विश्वगुरु भारत तब होता है जबकि संसार के सारे लोग भारत की इस विद्या को स्वीकार करके लाभान्वित होते हैं और सिर झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं। भारत का इतना बड़ा अध्यात्म जो केवल बुद्धि विलास नहीं कराता, जो अंध मान्यताओं में नहीं ले जाता हमें, जो केवल पूर्व जन्म और पश्चात जन्म के जंजाल में नहीं ले जाता, जो कोई ऐसी शक्ति को खुश करने का काम नहीं करता कि जो हमारा हजार दुख होते हुए भी, हजार विकार होते हुए मुक्त कर देगा, सारी जंजाल में जाता है। यानी प्योर साइंस है भाई, ऐसा ऐसा करोगे ये परिणाम आएगा ही, ऐसा ऐसा नहीं करोगे ये परिणाम नहीं आएगा। कितने स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति कहता है कि सारे संसार का काम कारण से चलता है, एक कारण होगा ये परिणाम आएगा, प्रतिच्य समुपाद, प्रतित्य ये होगा, ये प्रत्यय होगा तो ये उत्पाद होगा ही, ये प्रत्यय नहीं होगा तो ये उत्पाद नहीं होगा। जिसने इस बात को समझ लिया और अनुभूति से समझ लिया, उसने धर्म को समझ लिया। यो पटिच्च समुपादंग जानाति सो धम्मंग जानाति, यो पटिच्च समुपादंग पश्यति सो धम्मंग पश्यति, यो धम्मंग जानाति सो पटिच्च समुपादंग जानाति। धर्म और पटित्य समुत्पाद कारणों से कार्य संपन्न होने का कुदरती कानून, पर्यायवाची शब्द ना, धर्म तो स्वभाव है, प्रकृति के नियम है, कुदरत का स्वभाव है, कुदरत के नियम है, रित है, इसे विशेषण लगाना भूल जाए, इसे बौद्ध कहोगे धोखे में आ जाओगे, दूर भागोगे तो बौद्धों का है ये, कुदरत का कानून सबका है। इसे जैन कहोगे धोखे में आ जाओगे, इसे हिंदू कहोगे धोखे में आ जाओगे। धर्म का अपना सही अस्तित्व भारत में फिर जागे, और सारे संसार के लोग भारत की इस अनमोल संपदा का लाभ उठाएं। भारत के लोग तो पहले लाभ उठाएं। भारत में तो बहुत बड़ी कठिनाई, हर भारतवासी का बच्चा अपने आप को दार्शनिक मानता है। जन्मते ही ये दर्शन वो दर्शन, ये आत्मवादी वो निरात्मवादी, वो ईश्वरवादी वो निरीश्वरवादी, वो द्वैतवादी वो अद्वैतवादी, अरे क्या वादी और विवादी। अपने भीतर सच्चाई को देखना, धरना इन सारे वाद विवाद को एक ओर। जिस दिन ये होश आने लगेगा, बड़ा कल्याण होगा देश का, बहुत बड़ा कल्याण होगा। आज जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्मों के नाम पर, प्रदेशों के नाम पर कैसा खून खराबा होता है, होश नहीं आता। मेरा धर्म संकट में, मेरे धर्म को बजाता हूँ, मेरा धर्म संकट में, मेरी मस्जिद टूटने लगी रे, मेरा मंदिर टूटने लगा रे, मेरा धर्म खतरे में आ गया रे। तेरा धर्म उसी क्षण खतरे में आ गया जब तूने अपने मन में विकार जगाया। तेरा धर्म खतरे में आ गया ना, ये समझता ही नहीं। क्रोध जगाया जा रहा है, हत्या किए जा रहा है, आग जलाया जा रहा है, सब कुछ किए जा रहा है मेरे धर्म को बचाने के लिए। किसको बचा रहा है तू, क्या कर रहा है, कैसे होश जागे इस देश में। अपने भीतर देखे बिना जागने वाला नहीं है। हजार उपदेश ऊपर ऊपर के देते रहें, संप्रदायवाद बहुत बुरा, जातिवाद बहुत बुरा, सब कहेंगे कर्म से ही जाति होती है, जन्म से नहीं होती। व्यवहार में जन्म से ही जाति मानेंगे, संप्रदाय नहीं मानते, हम तो बड़े सेकुलर हैं, हम तो ऐसे हैं। व्यवहार में एकदम संप्रदायवादी है, कितना अपने आप को सेकुलर कहने वाला हो, क्योंकि उसने अनुभव नहीं किया भीतर कि ये बात तो सबकी एक जैसी है ना भाई। हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, धर्म तो एक जैसा है ना, कानून तो एक जैसा है ना, विधान तो एक जैसा है ना। ये बात अनुभूति से जिस दिन देश जानने लगेगा, कल्याण हो जाएगा, बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, और विश्व को एक बहुत बड़ी देन देगा भारत, बहुत बड़ी देन देगा। सारे विश्व में जो इस कदर खून खराबा, इस कदर हिंसाएं, हत्याएं, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना, एक दूसरे के प्रति बैर, कैसे निकले, कैसे उपदेशों से निकलेगा, इसी प्रकार निकलेगा। और इसे अजमाया गया आज के 2200 वर्ष पहले। एक इस देश में एक ऐसा सम्राट हुआ अशोक नाम का, लोगों को बौद्ध नहीं बनाया उसने, उसने लोगों को धार्मिक बनाया, क्योंकि बुद्ध भी लोगों को बौद्ध नहीं बनाते थे, धार्मिक बनाते थे। जो व्यक्ति बुद्ध के रास्ते पर चलेगा, उसकी शिक्षा पर चलेगा, उसके लिए शब्द यही इस्तेमाल करते थे, धम्मिको, धम्मठो, धम्मचारी, धम्म विहारी, ये शब्द इस्तेमाल करते थे। नहीं कहा ना कि ये बौद्ध हो गया, नहीं किसी को बुद्धिस्ट कहा, नहीं किसी को बौद्ध कहा। भारत में 500 बरस तक, बुद्ध के 500 बरस तक किसी व्यक्ति ने अपने को बौद्ध नहीं कहा। उसके बाद ये शब्द चलना शुरू हुआ और इसने हानि पहुंचाई। बात ठीक से समझ जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि जब जैसे ही धर्म के साथ कोई पुछल्ला लगता है वो संप्रदाय बन जाता है, और संप्रदाय बन जाता है तो अपना सार खो देता है, निस्सार प्रमुख हो जाता है, सार छूट जाता है। धर्म धर्म रहेगा, शुद्ध धर्म है, उसका कोई लेन देन नहीं किसी संप्रदाय से। ये कुदरत का कानून है, ये विश्व का नियम है, ये प्रतित्य समुत्पाद है, ऐसा होगा, ये रिजल्ट आएगा ही। मैं आग पर हाथ रखूंगा, मेरा हाथ जलेगा ही, मुझको जलना नहीं अच्छा लगता, मैं आग पर हाथ नहीं रखूं। अरे इतनी सीधी सी बात, धर्म की बात इतनी सीधी सी, और कितना उलझा दिया। ऐसी आत्मा होती है, वैसा परमात्मा होता है, इस संप्रदाय की आत्मा एक जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी होती है, उस संप्रदाय की आत्मा अंगुष्ठ प्रमाण होती है, उस संप्रदाय वाले की एक बिंदु के प्रमाण होती है, तिल के प्रमाण होती है, उसकी बाल के प्रमाण होती है। अरे होगी बाबा, फिर भी राग जगाया जा रहा है ना, तू द्वेष जगाया जा रहा है ना, और व्याकुल हो रहा है ना, बंधन में है ना, इस बात को तो देख। ऐसा परमात्मा होता है, इसका ऐसा परमात्मा, जिसके हाथ हैं पांव हैं उसका ऐसा परमात्मा जो निराकार है, इसके कुछ नहीं है, और इसका हाथ पांव है तो ऐसी शक्ल सूरत है उसकी, वैसी, अरे जैसी कल्पना करोगे वैसी बनाए जा रहे हो ना। होगा भाई, हो तो बड़ी अच्छी बात, न हो तो बड़ी अच्छी बात। मानने वाला आत्मा को मानने वाला भी, परमात्मा को नहीं मानने वाला भी, आत्मा को मानने वाला परमात्मा को मानने वाला भी, नहीं मानने वाला भी, एक जैसे अंधेरे में है ना। मैं अपनी बात बताऊं, अपने जीवन के अधिकांश वर्ष मैंने ऐसे पड़ोसी देश में बिताए, ब्रह्म देश में बिताए, जहां 100 में से 90 लोग अपने भीतर किसी अलग थलग आत्मा को नहीं मानते। 100 में से 90 लोग संसार को बनाने वाले किसी परमात्मा को नहीं मानते। उनको भी देखा, उनका भी अध्ययन किया। और अब इस देश में आया हूँ, पिछले 20 वर्षों से देखता हूँ यहाँ 100 में से 80 लोग बल्कि उससे भी ज़्यादा इस बात को मानते हैं कि हमारे भीतर एक अलग थलग आत्मा है, ऐसी है या वैसी है, आत्मा है और इस संसार को बनाने वाला एक परमात्मा है, ऐसे मानने वाले 100 में से 90 लोग इस देश में, ऐसा न मानने वाले 100 में से 90 लोग उस देश में। भाई एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह मैंने तो दोनों को देखा, मुझको दोनों में कोई फर्क नहीं लगा। ये मानने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार राग जगाता है, द्वेष जगाता है, अहंकार जगाता है और व्याकुल हुए जा रहा है। वो नए मानने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार राग जगाता है, द्वेष जगाता है, अहंकार जगाता है, व्याकुल हुए जा रहा है। क्या मिला रे इस जंजाल में, क्या मिला तुम्हें? कोई बुद्ध होगा तो सम्यक दर्शन सिखाएगा, सम्मा दिट्ठि सिखाएगा और सम्मा दिट्ठि अनुभूतियों वाली दिट्ठि, अन्यथा सम्यक नहीं है। कल्पना कर रहे हैं ना, मान रहे हैं ना, किसी ने कहा मान रहे हैं तो सम्यक कैसे होगा? अनुभूति की बात कहाँ आई? अनुभूति पर होगा तो ये सारा जंजाल निकल जाएगा। जो कुछ है सच्चाई ये कि इस क्षण में राग पैदा करता हूँ, द्वेष पैदा करता हूँ, व्याकुल होता हूँ, अपने आप को दुखी बनाता हूँ, सारे वातावरण को दुखी बनाता हूँ, सबको दुखी बनाता हूँ और इससे बाहर निकलता हूँ, अपने आप को सुखी बनाता हूँ, सारे वातावरण को सुखी बनाता हूँ। अरे जीने की कला आ गई ना, धर्म तो जीवन जीने की कला है। कैसे सुख शांति का जीवन अपने भीतर जिए और कैसे सुख शांति का निर्माण सारे वातावरण में करें जिससे और लोग भी सुख शांति का जीवन जी सकें। धर्म सीखने आए हैं, विपश्यना धर्म है, संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय कोई मान्यता नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है कि यहाँ 10 दिन काम कर गए तो अब तो मुक्ति मिल ही जाएगी। बादलों के ऊपर कोई भगवान बुद्ध बैठे होंगे, इसने तो विपश्यना की ना, 10 दिन 10 दिन का शिविर किया, इसको तो हम स्वर्ग में ले ही जाएंगे। ऐसा कोई बुद्ध बैठा नहीं बादलों के ऊपर, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। अपने आप को सुधारते जाओगे, 10 दिन का शिविर किया है, अब उसे जीवन में उतारना है। जीवन में उतरते वक्त व्यवहार में मुझे अप्रिय स्थिति आते ही क्रोध जागता है, पहले जैसा ही जागता है या कम जागने लगा। वो अप्रिय स्थिति आते ही अपनी संवेदना देखनी शुरू की कि नहीं की? देखनी शुरू की तो कितनी देर के बाद देखनी शुरू की? बहुत देर तक उसमें रोल करता रहा, फिर होश आया। अरे यूँ करते करते स्वभाव पलटोगे भाई, यहाँ तो ये विद्या सीखने आए, यहाँ रहने के लिए नहीं आए, कर्मकांड पूरा करने के लिए आए। रोगी आदमी होता अस्पताल जाना पड़ता है तो रोगी हैं, आएंगे अस्पताल में, जीना तो बाहर है, यहाँ थोड़ी जीना है। सचमुच फिर रोगी हो जाएगा, नहीं अपने आप को संभाल पाएगा तो फिर एक बार आएगा अस्पताल, कोई दोष की बात नहीं, आओ। लेकिन कर्मकांड न बना लो इसे कि 10 दिन का शिविर कर लिया तो हमने 100 शिविर कर लिया, हमारी सेंचुरी पूरी हो गई। होगी तुम्हारी सेंचुरी पूरी, वैसे ही राग वाले हो, वैसे ही द्वेष वाले हो, निकम्मी बात हुई ना। ये सीखने के लिए आए, ये सेमिनार, ये धर्म सभा केवल चर्चा का विषय नहीं रह जाए, केवल सिद्धांतों का विषय नहीं रह जाए। इसीलिए धर्म के दो पक्ष होते हैं, पर्यत्ति पटिपत्ति। पटिपत्ति नहीं हो तो पर्यत्ति क्या करेगी? क्या पर्यत्ति? पाली शब्द है, संस्कृत में हिंदी में कहें तो पर्याप्ति, माने पर्याप्त ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान इतना तो होना चाहिए कि हम प्रतिपद एक एक पद एक एक पद एक एक कदम रास्ते पर चल सकें। प्रतिपद चलने के लिए पर्याप्ति होनी चाहिए, श्रुत ज्ञान होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन केवल श्रुत ज्ञान ही हो गया, पर्याप्ति तो बहुत, पुस्तकें तो बहुत पढ़ी, चले नहीं एक कदम भी तो क्या लाभ हुआ? इसीलिए गुरुदेव कहा करते थे सयाजी उबाखिन कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस शुड गो टुगेदर। अगर केवल थ्योरी 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 की बात करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मिलने मिलाने वाला कुछ नहीं, धोखा ही धोखा होकर रह जाएगा। इसीलिए अपने यहाँ शब्द हैं आगम, आगम माने परंपरा का ज्ञान जो हमारे पास आया है, परंपरा से चला हुआ ज्ञान आया, पुस्तकों में आया, किसी अन्य की वाणी है, हमारे पास पुस्तकों में आई, वो हम आगम कहते हैं। आगम से नहीं मुक्ति होगी, आगम अधिगम बन जाएगा। जब हम चलने लगेंगे तो अधिगम बन जाएगा, अधिगम होगा तो प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी, निर्वाण प्राप्त होगा, चित्त की निर्मलता प्राप्त होगी, राग विहीन अवस्था आश्रय विहीन अवस्था प्राप्त होगी। अधिगम हो गया, चला उस पर, कल्याण तो अधिगम से होगा। तो ये जो इस तरह के सेमिनार इसलिए नहीं कर रहे कि लोगों का बुद्धि विलास हो जाए, हमारी मान्यता देखो कितनी अच्छी, बौद्धों की कितनी अच्छी, देखो जैनी गए गुजरे, देखो वो आत्मा को मानने वाले, वो कहेंगे रे आत्मा को नहीं मानने वाले। इसके लिए नहीं सेमिनार हुआ करते, इसलिए होते हैं कि जो काम करने आए हो, जो पटिपत्ति करने आए हो, उसकी पर्याप्त ज्ञान उसका बुद्धि के स्तर पर, शास्त्रों के स्तर पर, वाणी के स्तर पर उसे समझें, ताकि उसको और अच्छी प्रकार कर सकें, उसका अधिगमन करें, उस रास्ते पर चलना सीखें। सार्थक यही है जिस दिन विपश्यना केवल इस तरह के इंटरनेशनल सेमिनार बन के रह जाएगी और वो पीछे का हिस्सा काम करना बंद कर देगा, उस दिन सबका बड़ा दुर्भाग्य होगा, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। वो पीछे वाला हिस्सा काम करता रहेगा तो यहाँ भले सेमिनार लगाते रहो, सदियों तक चले, सेमिनार भी चले और वो भी चले, तो कल्याण ही कल्याण है। और बहुत जल्दी ये हो जाने वाला है कि वो तो सब शून्यागार शून्य हो जाएंगे और ये बड़े प्रमुख हो जाएंगे। खूब बातें होंगी विपश्यना पर, खूब पुस्तकें लिखेंगे विपश्यना पर। एक घटना हमारे गुरुदेव की, सयाताजी महाराज किसान थे, मामूली किसान, और इस विद्या में पारंगत हो गए। पारंगत हो गए तो लोगों को सिखाने लगे। करुण होता है आदमी के, रहा नहीं जाता, अरे इतनी बड़ी विद्या मिल गई, मेरा कल्याण हुआ, सारे लोग दुखियारे और अंधे हैं, इसलिए दुखियारे, उनको पता नहीं ऐसी विद्या भी है, ये जानते ही नहीं बेचारे, और इस नशे में है कि मैं तो खूब जानता हूँ, इतनी पुस्तकें पढ़ी, अरे मेरा क्या कहना, नशे में है बेचारे, उनको ये विद्या मिल जाए तो। बड़े करुण चित्त से लोगों को सिखाते थे। तो दो लोग आए जो शास्त्रों के बड़े पंडित थे, एक शिविर किया, इतने भाव विभोर हुए, अरे अब तक तो हम पुस्तकें पढ़ते थे, आपने तो ये करना सिखा दिया, बड़ा कल्याण हो गया, हमारा तो बड़ा कल्याण हो गया। तो बड़ा धन्यवाद देकर गए, और दो चार छः महीने के बाद विपश्यना पर एक पुस्तक लिख के ले आए, और उस पुस्तक को कहा ये गुरुजी सयाजी सयातेजी को समर्पित किया, उस पर छपा हुआ। समर्पण करते हैं ना, एक पुस्तक के प्रकाशित होती है, किसको समर्पण किया, सयाताजी को समर्पण किया। लाए उनके पास, उन्होंने देखा, कहा ये दो पुस्तकें, दो प्रति लेकर आए, कहा दो ही प्रति हमको समर्पित की है, कितनी छपी, कहा 2000 छपी। सब लाओ भाई, हमको समर्पण किया है ना, सब ले आओ। सब ले आए, फिर उनको कहा कि जाओ कमरे में देखो, केरोसिन की बोतल पड़ी है, उसे भी ले आओ, और कहा छिड़को इस पर और इसको आग लगाओ। अरे कितनों को उलझाओगे रे तुम, एक शिविर करके समझ गए तुम, खूब समझ गए धर्म को, औरों को सिखाने लायक भी हो गए, पुस्तकें लिखने लायक भी हो गए। अरे बावले आदमी, ये करने की विद्या है, ये बुद्धि विलास की विद्या नहीं है, ये बहस करने की, तर्क करने की विद्या नहीं है, ये तो अनुभूति करने की विद्या है, और तू इसको पुस्तकों में लिखता है, तेरे शब्दों के क्या अर्थ लेगा कोई, जिस व्यक्ति ने ये काम किया नहीं, वो शब्द का क्या अर्थ लेगा। जैसे आज भारत में क्या अर्थ होने लगा, सति स्मृति, स्मृति को याददाश्त कहते हैं, भारत के पुराने भारत में स्मृति याददाश्त नहीं, सजगता, इस क्षण के प्रति सजगता, और आज स्मृति याददाश्त होने लगी। कितने शब्द अपने अर्थ खो देते हैं, और वो बेचारा तो उस खोए हुए अर्थ में ही उसको समझेगा, उलझ जाएगा ना। तो भाई ये जितने लोग भी पीढ़ियों तक, हम चाहते हैं कि विद्या चले इस देश में और सारे विश्व में चले, जितने लोग भी ये जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं कि ये आगे बढ़े और उनका कल्याण हो, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि गुरु जी की ये बात कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस शुड गो टुगेदर, केवल थ्योरी बन के न रह जाए, केवल पर्यत्ति बन के न रह जाए, पटिपत्ति उसके साथ जुड़ी ही रहे। पटिपत्ति जुड़ी है और पर्यत्ति कभी छूट भी गई तो कुछ नहीं खोया, काम की बात तो है ना, काम तो कर ही रहे हैं ना, क्या हुआ। लेकिन पटिपत्ति छूट गई और पर्यत्ति केवल रह गई तो सब खो दिया, कुछ नहीं बचा। बहुत सजग रहकर काम करना है, बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग आए हैं शिविर में बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं वो तो केवल एक प्रेरणा लेकर जाएं। ये पर्यत्ति शब्द का एक अर्थ ये भी है, पर्याप्त माने पर्याप्त प्रेरणा तो मिले, आया कोई आदमी तो पर्याप्त प्रेरणा तो लेके जाए। भाई बुद्धि से तो खूब समझता हूँ, पर भीतर क्या होता है इसको मैंने कभी देखा नहीं ना। तो बुद्धि से तेरा कॉन्शियस माइंड समझता है ना, अनकॉन्शियस क्या कर रहा है तुझे नहीं मालूम ना, उन दोनों के बीच की दीवार तूने तोड़ के नहीं देखी ना, तो इसको तोड़ के देखेगा तब समझेगा, अरे बुद्धि के स्तर पर इतनी लंबी लंबी बातें किया करता था, भीतर तो कुछ और ही निकला रे, भीतर की बात तो बिल्कुल अलग ही निकली रे, करेगा तो ये पर्याप्त प्रेरणा लेकर के जाए। और जो लोग शिविर में बैठे हैं वो ये पर्याप्त प्रेरणा इस बात की लेकर के जाएं कि केवल शिविर में बैठ जाने से काम नहीं चलेगा, वो जीवन में उतरने हैं, हमारे जीवन का अंग बन जाए, धर्म हमारे जीवन का अंग बना तो कल्याणकारी, अन्यथा धोखा हो गया धर्म के नाम पर। जीवन का अंग बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, उसको जांचते रहेंगे, दूसरा कोई नहीं जांचेगा, खुद जांचेंगे, खूब जांचेंगे, और बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। धर्म धारे तो मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, शुद्ध धर्म समझें तो सही क्या होता है, और कैसे धारण किया जाए ये विद्या सीख करके तो देखें। जैसे अंधे को आँख मिल गई, अपनी बात जानता हूँ कि इस रास्ते पर आने के बाद यूँ लगा कि जैसे कितने अंधेरे में जीवन बीत रहा था। बड़े प्रवचन वेदांत के देता था, बड़े प्रवचन गीता के दिया करता था, और न जाने क्या क्या, हम तो विश्व गुरु रहे हैं, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, अरे हम कुछ नहीं, शून्य है भाई, बातें ही बातें करने वाले, क्योंकि हमने कैसे करो ये विद्या खो दी। करो 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 की विद्या तो खूब, वितराग बनो, विद्वेष बनो, अनासक्त बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, क्या स्थित प्रज्ञ बनो ये नहीं जानते। संप्रज्ञान ही स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा में प्रतिक्षण स्थित रहता है, ये सिखाते हैं ना संप्रज्ञान के लिए, खाते पीते चलते फिरते हर अवस्था में तुम्हें सजग रह करके अपने भीतर अनित्यता का बोध, ये प्रज्ञा तुम्हें जगाए रखनी है, तो स्थित होगा उसमें, स्थित होगा तो अनासक्त अपने आप हो जाएगा, तो जीवन मुक्त अपने आप हो जाएगा। वो तो करें नहीं और केवल पाठ करें, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, और ये भाषा, ये भाषा, ये भाषा, औ देखो हमारी कितनी अच्छी व्याख्या है, अरे क्या काम आए रे, रसगुल्ला बहुत मीठा, बहुत मीठा, अरे तूने तो नहीं चखा ना, तेरे लिए कहाँ मीठा हुआ, जिसने चखा होगा उसके लिए मीठा होगा। और ये नशा सिर पर कि हमारा रसगुल्ला सबसे मीठा, हमारी गीता सबसे ऊंची, हमारा धम्मपद सबसे ऊंचा, हमारी कुरान सबसे ऊंची, हमारा बाइबल सबसे ऊंचा, तूने करके देखा नहीं, देखा ना, चख के देखा नहीं, देखा ना, धोखा ही धोखा भाई, इस धोखे के बाहर निकलो, बहुत सदियां बिता दी, 2000 वर्ष का अंधेरा है, निकलो अब देखो अपने भीतर सच्चाई को देखने की। भारत की विद्या बौद्धों की नहीं, बिल्कुल नहीं, जैनियों की नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदुओं की नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कानून है कुदरत का जो सबका एक जैसा है, करोगे लाभान्वित होगे ही। हर संप्रदाय के लोग आते हैं, लाभान्वित होते हैं, कोई अपने को बौद्ध हो गया ऐसे कहने के नहीं आता, आता भी है तो हम कहते हैं कि क्या पागलपन है, कहो कि मैं धर्मिष्ठ हो गया, कष्ट होता है ना धर्मिष्ठ हो गया कहने में, तो सचमुच होना पड़ता तो कहेगा धर्मिष्ठ हो गया, और बुद्धिष्ट हो गया कहना तो आसान है, हमने तीन रतन की शरण ले ली 3 बार इसलिए हम तो बुद्धिष्ट हो गए। अरे बुद्धिष्ट तो हो गए भाई, तेरे में धर्म तो नहीं आया ना, तेरे में शील नहीं आया, तेरे में समाधि नहीं आई, तेरे में प्रज्ञा नहीं आई। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो व्यक्ति शील समाधि और प्रज्ञा का जीवन जीता है वो अपने को चाहे जिस नाम से पुकारे, मेरे लिए वो बौद्ध है, मेरे लिए वो बुद्ध की शिक्षा का पालन करने वाला व्यक्ति है। कोई व्यक्ति शील समाधि प्रज्ञा को जीवन में नहीं उतारता, अपने को 1000 बौद्ध कहता फिरे, मेरे लिए वो बौद्ध नहीं है। धर्म की बात है ना, धर्मवान व्यक्ति धर्म की बात करेगा, उस संप्रदाय में उलझाएगा नहीं। तो भाई इस देश ने तो संप्रदाय के बहुत खिलवाड़ देखे, बड़ी गंदगियाँ देखी, बड़ा दुख देखा, अब तो उसके बाहर निकलें, भूल जाएं कि ये बौद्धों का है, भूल जाएं ये जैनियों का है, ये ईसाइयों का है, ये मुसलमानों का है, ये ईसाई, अरे भाई धर्म है सबका है, ये रोग है और इस रोग के बाहर निकले की ये दवा है, ये तरीका है, ये हमारे बंधन है, ये बंधन खोलने का एक रास्ता है जो सबका है, सब पर एक जैसा लागू होता है, उसका उपयोग करके सचमुच अपना कल्याण साध लें, अपना मंगल साध लें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लें। जो जो लोग आए हैं सही माने में अपने विकारों से मुक्त हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व मंगलं, भवतु सर्व